भेद है स्वर में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोता, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नहूम नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है नीनवे नगर का नाश। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परमेश्वर पिता की दया से कुशल पूर्वक हैं और हमेशा की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से पुराने नियम की पुस्तक में से नहूम नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन से हम सब देखते आ रहे हैं कि नहूम के पुस्तक में परमेश्वर अशुरों के विनाश के बारे में कहता है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। इससे पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थी वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से एक साथ अलग अलग स्थानों पर बैठ करके कर सकते हैं। इन दिनों जब हम नहूम की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि आज जो कुछ भी हम आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, मनन चिंतन करते हैं, सुनते हैं, होने दे प्रभु कि आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए, उनके जीवन के हर एक कमी घटियों को दर्शाने पाए, ताकि इस अध्ययन के द्वारा हम अपने जीवन को नई रीति से चला सकें। आज हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, बीमार अवस्था में हैं। प्रभु जी, आप उन पर भी कृपा दृष्टि करें। आज के वचन के द्वारा आप उनसे भी बातचीत करें। आज के वचन पर अपनी आशीष दें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, नहूम अशुरों के लिए एक प्रश्न रखता है, तुम यहोवा को क्या समझ रहे हो? उन्हें अपने सैन्य बल पर गर्व था, परंतु नहूम कहता है वे सूखे खूंटों के समान भस्म किए जाएंगे, चाहे वे सब प्रकार से सामर्थी हों और बहुत भी हों, तो भी पूरी रीति से वे काटे जाएंगे और शून्य हो जाएंगे और दूसरी बार विपत्ति के लिए वे न रह पाएंगे। परमेश्वर ने कहा, आगे को तेरा वंश न चले, मैं तेरे देवालयों में से मूर्तों को काट डालूंगा। इतिहास गवाह है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा वह पूरा हुआ है। अशुर जाति समाप्त हो चुकी है और मादियों ने, जो एक ईश्वर की उपासना करते थे, उनके मंदिरों को ध्वंस कर दिए। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और नहूम की पुस्तक एक अध्याय उसके 15 पद को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, देखो पहाड़ों पर शुभ समाचार का सुनाने वाला और शांति का प्रचार करने वाला आ रहा है, अब हे यहूदा, अपने पर्व मान और अपनी मन्नतें पूरी कर, क्योंकि वह ओछा फिर कभी तेरे बीच में होकर न चलेगा, वह पूरी रीति से नष्ट हुआ है। परमेश्वर नहूम के द्वारा कह रहा है, मुझे त्यागना नहीं, मूसा की व्यवस्था से मत हटो, क्योंकि मैं तुम्हारे बैरी को नष्ट करके तुम्हारे लिए एक मसीहा भेजूंगा जो पहाड़ों पर शुभ समाचार सुनाएगा। नहूम अश्शूर के संदर्भ में कहता है और यशाया भी उसके 52 अध्याय के 7 पद में यही अभिव्यक्ति काम में लेता है, परंतु वह कुछ अधिक विस्तार में है। लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है, तेरा परमेश्वर राज्य करता है। यशाया बेबीलोन के विषय यहूदा वासियों से कहता है और नहूम इसी बात को अश्शूरों के विषय में उत्तरी राज्य से कहता है और पौलुस यही बात रोम की कलीसिया को लिखता है। रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसके 13 से 15 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसे लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। मेरे विचार में नहूम ने पहले यह कहा, तदुपरांत यशाया ने कहा, और अंत में पौलुस इसका संदर्भ देखकर इसराइल के प्रसंग में इसे जोड़ता है। पौलुस कहता है कि परमेश्वर ने इसराइल का त्याग नहीं किया है, भविष्य में उनके लिए आनंद का समाचार है। दूसरी ओर यह वैश्विक संदेश है जो आज की प्रासंगिक है। रोमियों की पत्री 10 अध्याय उसके 13 पद में पौलुस लिखता है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जी हां, द्वार आज भी खुला है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। अब जब कोई सुसमाचार ना सुनाए तो मनुष्य सुनेगा कैसे? प्रचारकों का भेजा जाना आवश्यक है, और मेरे विचार में परमेश्वर उन्हें भेजेगा। यशाया नबी की पुस्तक 52 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, वे चाहे पानी के जहाज से, चाहे हवाई जहाज से, चाहे रेडियो से संदेश पहुंचाएं, वे संदेश लेकर जरूर आएंगे। हम यह मानते हैं कि हमें यरूशलेम से आरंभ करना है, इसलिए हम अपने देश में पहले प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं। हम रेडियो द्वारा पृथ्वी की छोर तक भी पहुंचने का प्रयास करते हैं, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन हर एक मनुष्य तक पहुंच जाए। मैं अपने पांव को सुहावना देखना चाहता हूं, और यही चाहता हूं कि पांव में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लूं। मैं इससे पूरी पृथ्वी पर रेडियो के माध्यम से विचरण करना चाहता हूं, और मनुष्य में सुसमाचार सुनाना चाहता हूं, ताकि हर एक लोगों के बीच में यह मेल का सुसमाचार पहुंचने पाए। यह एक अनुपम विधि है जिसके माध्यम से पवित्र आत्मा धर्मशास्त्र का प्रचार करता है। नहोम की पुस्तक धर्मशास्त्र की व्याख्या की एक बहुत अच्छा विधि प्रस्तुत करती है। उसने स्पष्ट किया है कि हम समझें या ना समझें, हमें उसे ज्यों का त्यों ग्रहण करना है। हमने यह भी देखा है कि परमेश्वर ने एक समय में एक राष्ट्र के लिए सीधी व्याख्या की है, फिर दूसरे समय में दूसरे राष्ट्र के लिए और आज संपूर्ण विश्व के लिए। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि अध्याय एक समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय दो से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। अध्याय दो का विषय है नीनवे के सर्वनाश का परमेश्वर का निर्णय लागू। मेरे मित्रों, अध्याय दो और अध्याय तीन में हम देखेंगे कि नीनवे के सर्वनाश के निर्णय का लागू करने में परमेश्वर की धार्मिकता और भलाई प्रकट होती है। परमेश्वर ने कहा ही नहीं करके दिखाया और बड़े ही अद्भुत तरीके से। अश्शूरों का अस्तित्व का अंत अध्याय दो में नहोम अश्शूरों पर आने वाले परमेश्वर के भयानक दंड की भविष्यवाणी करता है। इतिहास गवाह है कि यह भविष्यवाणी ज्यों की त्यों पूरी हुई। पहले अध्याय के पद 14 में परमेश्वर कहता है कि वह उसकी कब्र खोदेगा क्योंकि वह नीच है। कब्र खोदने से परमेश्वर का अभिप्राय था कि वे मिट्टी में दबाए जाएंगे और मेरा विश्वास कीजिए कि वे वास्तव में दब गए थे। नहोम की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है, सत्यानाश करने वाला तेरे विरुद्ध चढ़ आया है, गढ़ को दृढ़ कर मार्ग देखता हुआ चौकस रह, अपनी कमर कस अपना बल बढ़ा दे। मेरे मित्रों, यह पद मादी बेबीलोन सेना के विषय में है जिसने 612 ईस्वी पूर्व में नबोपलेसर और शयर्स की अगुवाई में अश्शूर देश को पूरा का पूरा ध्वंस कर दिया था। नहोम उनकी निंदा करके कहता है, गढ़ को दृढ़ कर। अश्शूरों ने किसी को नहीं छोड़ा था और वे अपनी राजधानी को अभेद समझते थे, परंतु परमेश्वर कहता है कि उनका सर्वनाश होगा और हुआ। नहोम 2 अध्याय के 2 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा याकूब की बड़ाई इसराइल की बड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर रहा है, क्योंकि उजाड़ने वालों ने उनको उजाड़ दिया है और दाखलता की डालियों का नाश किया है। यहां पर नहोम कहता है कि अश्शूरों को दंड देने का समय आ गया है क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रजा को दंड देना पूरा कर चुका है और अब उन्हें पुनः स्थापित करना चाहता है। याकूब और इसराइल का अर्थ है दक्षिणी राज्य यहूदा और उत्तरी राज्य इसराइल है। ध्यान दीजिए, दक्षिणी राज्य यहूदा है और उत्तरी राज्य इसराइल है। उजाड़ने वालों अर्थात परमेश्वर की प्रजा के बैरी, विशेष करके अश्शूर, दाखलता की डालियों अर्थात इसराइल राष्ट्र, आप देख सकते हैं भजन संहिता 80 उसके 8 और 9 में। मेरे मित्रों, यह अध्याय नहोम की विस्तृत भविष्यवाणी है जो आज उसके 100 वर्ष बाद के इतिहास का सही वृतांत है। यह अश्शूरों के विरुद्ध परमेश्वर के दंड का अंतिम निर्णय है। यहां अश्शूरों के सर्वनाश की भविष्यवाणी का सत्य है और वे फिर कभी ना उभर पाए। जी हां, परमेश्वर के वचन के अनुसार बेबीलोन तथा अन्य कुछ राष्ट्रों का पुनः आगमन होना है परंतु प्राचीन विश्व शक्ति अश्शूरों का कभी भी आना संभव नहीं है। परमेश्वर इसे स्पष्ट रीति से कहता है कि उनका आना संभव नहीं है। नीनवे का पतन, यहां एक भयानक शब्दों में इसे व्यक्त किया गया है। हम इस स्थान में गलातियों के पत्र 6 अध्याय उसके 7 पद को लिख लें, मनुष्य जो बोएगा वही काटेगा। अश्शूर संसार के पार्श्विक देशों में से एक था। वे अपने बहरी को रेगिस्तान की रेत में गले तक दबा देते थे, अर्थात गाड़ देते थे, और उसकी जीभ में कांटा चुभा देते थे कि वह पहले तो पागल हो जाए, फिर दुखदायी मृत्यु मर जाए। यह एक छोटा सा काम वे करते थे और ऐसे अनेक छोटे छोटे आश्चर्य उनके पास अपने बैरी के लिए थे। कहा जाता है कि अश्शूर सेना को सामने देख पूरा का पूरा समुदाय आत्मदाह कर लेता था कि उनके निर्दयी हाथों में पड़ने से पहले मर जाना अच्छा है। उस युग में उनका आतंक व्याप्त था। नहम की पुस्तक में उनका पीछे हटना बताया गया है क्योंकि मादी बेबीलोन उनके विरुद्ध में आ रहे हैं। हम आगे पढ़ते हैं नहुम 2 अध्याय के 3 पद में लिखा है, उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गई और उसके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं। तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। लिखा है उसके शूरवीरों की ढालें लाल रंग से रंगी गई। इसका अर्थ यह नहीं कि लाल रंग लहू है, जैसा कुछ टीकाकार कहते हैं। अश्शूरों को लाल रंग बहुत अच्छा लगता था। उनकी कलाकृतियों में लाल रंग बहुतायत से पाया गया है। लाल रंग में उन्हें बहुत रुचि थी और कुछ विचारकों का मत है कि उनकी ढालें तांबे की थी जिसकी चमक लाल रंग की होती थी। वे ऐसा क्यों करते थे? ऐसा माना जाता है कि इस प्रकार वे अपने बैरियों को डराना चाहते थे। युद्ध में यथासंभव अधिक से अधिक छल किया जाता था कि वे आपके बैरी अधिक से अधिक डरें। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जब जापान पर अणुबम डालने की चेतावनी दी थी, तब जापान ने कहा कि वे डरा रहे हैं। युद्ध एक भयानक बात है, परंतु नहुम की पुस्तक में मेरे विचार में परमेश्वर का सिद्धांत क्रियाशील है। उस पार्श्विक बैरी को अपनी करनी का फल जरूर मिला। मेरे प्रियो, यहां मुख्य विषय है कि बैरी को धोखा दिया जाए, और यही कारण था कि अश्शूर अपनी ढालों को लाल रंग से रंगते थे। उनके योद्धा लाल रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, उनकी वर्दी भी लाल रंग की थी। तब हम पढ़ते हैं, लिखा है, तैयारी के दिन रथों का लोहा आग के समान चमकता है और भाले हिलाए जाते हैं। रथों पर सुसज्जित हथियार और उनकी रचना, उनके रथ मिस्र के समान लकड़ी के नहीं थे। ऐसा प्रतीत होता है कि अश्शूरों के पास आधुनिक रथ भी थे। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि अश्शूरों के पास सब प्रकार के हथियार थे, सैनिक थे, उनका दबाव था, वर्चस्व था, और इस प्रकार से देखा जाए तो अन्य लोग इनसे भयभीत थे क्योंकि ये बहुत ही पार्श्विक किस्म के लोग थे। ये तड़पा तड़पा करके लोगों को मारते थे ताकि अन्य लोग इनकी प्रताड़नाओं को देखकर भयभीत हो जाएं, डर जाएं। और यही कारण है कि जब युद्ध में बंदी पकड़े गए तो वे अपने आप को आत्मदाह कर लेते थे ताकि उनकी प्रताड़ना से बच जाएं। आज भी इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जीवित हैं और लोगों को प्रताड़ित करते हैं, और वे अपने भय को लोगों के ऊपर में ढालते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं कि आज नहीं तो कल परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि वह असुरों को नाश करेगा, और जैसा हमने देखा है कि इतिहास गवाह है कि असुर नाश किए गए, उनके वंश खत्म हो गए। आज हम असुरों को नहीं देख पाते हैं क्योंकि परमेश्वर सच्चा और न्याय करने वाला परमेश्वर है। आज वह ऐसे लोगों को दंड देता है जो उसके निकटता में नहीं आना चाहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह सबको दंड दे, परंतु यह निश्चय है कि वह हमें अवसर देता है। असुरों को भी 100 साल का मौका दिया गया था ताकि वे अपने मनों को फिराएं, उस सच्चे परमेश्वर की बातों को मान लें, परंतु उन्होंने अपने मनों को नहीं फिराया और वे क्रूर होते चले गए, और यही कारण है कि परमेश्वर को अपना न्याय करना पड़ा। मेरे प्रिय श्रोता मित्रों, नहुम की पुस्तक में हम परमेश्वर के न्याय की बातों को देख रहे हैं, नीनवे नगर के पतन की बातों को देख रहे हैं। इतना ही नहीं, आज भी वही परमेश्वर है जो कभी बदलता नहीं। वह आज भी हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गांव और शहर में राज्य करता है। वह हम में से हर एक के जीवन की बातों को जानता है, हमारे हर एक गुप्त पापों को जानता है, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे मित्रगण, हमारे कलीसिया के लोग उस पाप को नहीं जानते हैं जिसे आपने किया है, परंतु आप यह ना सोचें कि इसे कोई भी नहीं जानता है। परमेश्वर जानता है, उसने आपको मौका दिया है, अवसर दिया है, और आप उस अवसर का लाभ उठाएं, क्योंकि एक समय निश्चित किया गया है और आपको उसका दंड अवश्य मिलेगा। इससे पहले कि आप दंड पाएं, प्रभु यीशु के पास आएं, अपने पापों के लिए पश्चाताप करें, उससे क्षमा मांगे और अपने जीवन में उसे ग्रहण करें। और जब आप अपने पापों से पश्चाताप करते हैं तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे, आपको क्षमा करेंगे, आपको नया मन और नया जीवन देंगे। मेरे श्रोता मित्रों, आज नहुम की पुस्तक के द्वारा से हमें इसी बात का स्मरण दिलाया गया है कि परमेश्वर न्यायी है और वह दुष्ट को अवश्य ही दंड देता है, चाहे आप कोई भी क्यों न हो। वह आज आपको अपनी निकटता में लाना चाहता है। क्या आज आप उसकी आवाज सुन रहे हैं? क्या आप उसके निकटता में आने के लिए तैयार हैं? या आप भी असुरों की तरह कठोर होकर के उसके दंड का सामना करना चाहते हैं? या आप यह सोच रहे हैं कि मैं बच जाऊंगा? परमेश्वर चाहता है कि आप बचें, लेकिन अपने तरीके से नहीं, परमेश्वर की निकटता में आकर। एक बार असुरों ने मन फिराया जब योना नबी ने नीनवे नगर में वचन का प्रचार किया, लोगों ने मन फिराया और वे बचाए गए। आज वह चाहता है कि आप भी बचाए जाएं। मेरे मित्रों, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय भी समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आज के इस वचन के द्वारा आपको अवश्य ही आशीष मिला है। आप अपने जीवन के लिए उत्तम निर्णय लें और परमेश्वर की ओर लौट आएं, ताकि आप नाश नहीं परंतु अनंत जीवन को पाएं। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
सुबह की पल के खुले तो मैं तेरी बात करूं, सुबह की पल के खुले तो मैं तेरी बात करूं, सितारे शाम के मुस्काए तेरी बात करूं, सुबह की पल के खुले तो मैं तेरी बात करूं। तेरे ही घर में रहूं उम्र भर मेरे यीशु, तेरे ही घर में रहूं उम्र भर मेरे यीशु, तेरे जमाल की तेरे करम की बात करूं, सितारे शाम के मुस्काए तेरी बात करूं, सुबह की पल के खुले तो मैं तेरी बात करूं। मेरे ये गीत मेरे सुर भी तेरा दिया है, मेरे ये गीत मेरे सुर भी तेरा दिया है, नए सुरों नए नगमों से बात करूं, सितारे शाम के मुस्काए तेरी बात करूं, सुबह की पल के खुले तो मैं तेरी बात करूं। तेरे ही खून की रंगत हो मेरे गीतों में, तेरे ही खून की रंगत